मुश्किल अल्फाज की वजाहत और उनके मादाजात रूट्स। सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 78 78 अकीम सलाता, अकीम काफ व मीम, और यहां पे अकीम जो है ये ऑर्डर का सिगा है। दूसरा है ये दुलूकी, दुलूक जो है इसका रूट है दाल लाम काफ, इसका मानी है ढलना। ढलने के लिए कुरान में दो लफ्ज आए हैं, एक तो जवाल है ना, जाला, जे बोलाम सूरज का ढलना, सूरज का सर पे से ढलना, ढलने का वक्त। जवाल का लफ्ज किसी चीज के अपनी इंतहा की बुलंदी पर पहुंचकर बतदरीज नीचे आने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जवाल का लफ्ज किसी चीज का अपने सही रुख को छोड़कर एक जानिब माइल होने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे किसी की हुकूमत मिट गई उसके लिए भी आता है कि जाल अनहु मुल्को, तो उसका मुल्क जो है वो उससे हट गया, मिट गया। अच्छा, दूसरा लफ्ज जो इस्तेमाल होता है वो है दुलूक का, और दुलूक जो है सूरज का गुरूब होने के लिए झुकना, ढीलापन, मजबूती से ढीलापन, उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो दुलूक के फिर क्या तर्जमा आप करेंगी कि सूरज का जो गुरूब होने का वक्त होता है ना उसको दुलूक कहते हैं। तो देखें, जवाल भी ढलने के लिए आता है और दुलूक भी ढलने के लिए आता है, लेकिन दोनों में बड़ा बारीक सा फर्क है। इसके बाद अहम लफ्ज है गसकिल लैल, गसक, गैन सीन काफ, इसके मानी है तारीकी छाना। तारीकी छाने के लिए कुरान में छह लफ्ज आए हैं। वल्लैली इज़ा असअस, पहला लफ्ज है असअस, सूरज गुरूब होते ही जब शाम का अंधेरा फैल जाता है तो उसके लिए असअस का लफ्ज है वो इस्तेमाल किया जाता है। फिर है गैन सीन काफ, गैन सीन काफ, इसके मानी है शफक गायब हो जाने के बाद का अंधेरा, रात का इब्तदाई हिस्सा, अव्वलुल लैल। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्री मा खलक व मिन शर्री गासिकिन इज़ा वक़ब। अब आप देख लें कि गासिकिन, तो उसका रूट भी यही है। चौथा लफ्ज है गताशा, रात का तारीक होना, किसी की नजर जो है ना उसका कमजोर होना, धुंधला जाना, तो रात की तारीकी और नजर की कमजोरी को भी गताश कहते हैं। व अगतशा लैलहा व अखरजा दुहाहा। चौथा लफ्ज है वकब, अभी आपने सूरत फलक पढ़ी थी ना, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्री मा खलक व मिन शर्री गासिकिन इज़ा वक़ब। तो दो लफ्ज जो है वो मुतरादिफात एक ही आयत में आ गए ना, तो आपने गसक तो पहले पढ़ लिया, चौथा है वक़ब। मौका बा का मतलब होता है किसी चट्टान वगैरह में गड़े का होना, वक़ब के मानी है गड़े में दाखिल होकर गायब हो जाना, इतनी तारीकी का छा जाना जिसके अंदर चीजें गायब हो जाएं। सूरज जो है वो वकब में आ गया तो सूरज का गुरूब हो जाना, व मिन शर्र गासिकिन इज़ा वकब। और पांचवा दर्जा है सजा का, रात का सन्नाटा, तारीकी, जैसे इतना अंधेरा रात जब पूरी तरह सुनसान होती है, खामोश होती है, पुरसुकून हो जाती है, सब सो जाते हैं, तारीकी पूरी तरह छा जाती है, उसके लिए सजा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। और वैसे अगर किसी के ऐबों को छुपा लिया जाए ना, बिल्कुल अंदर हो और आप हो बड़े पुरसुकून, आपके पास उसका ऐब है लेकिन आप पुरसुकून है, तब भी आता है सजा व आयबे अकीक, तब भी लफ्ज आता है। तो छठा अज़लमा का है, आप पढ़ चुकी हैं कि वाइज़ा अज़लमा अलैहिम क़ामू, सूरत अल बकरा आयत 20 में आप ये पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे गसक का लफ्ज है और अल फजर फाजीम रा वसी पैमाने पर जो है वो फाड़ना, तो फजर जो है वो वसी पैमाने पर उसमें रोशनी सी फूटती है ना, तो उसको फजर कहा जाता है। और चश्मों के फूटने के लिए भी आया था ना, मशहूदा शीन हादाल और हाजिर होना उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये लफ्ज गवाही के लिए भी आता है, जैसे कोई किसी का शाहिद हो और शहादत देना, मशहूदा किसी तरह हाजिरी के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। आयत नंबर जो है वो 79 है, 79, इसमें लफ्ज है फतहज्जद। फतहज्जद इसका रूट है हा जीम दाल, और ये लफ्ज जो है ये जविल अजदाद में से है, जविल अजदाद में से है। सोना और जागना, सोना भी और जागना भी दोनों तरह ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो सोने के लिए 6 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं ना, ये उसका छठा दर्जा है आखिरी। हा जीम दाल, रात को सोना भी जागना भी, कभी सोना कभी जागना, सोते जागते रात गुजारना, रात को जागकर नमाज पढ़ना। और तहज्जुद क्या होती है कि जब तक आप जो है वो सोए नहीं, मतलब एक राय ये है कि तहज्जुद है ये कि पहले आप सो जाएं फिर उठें और फिर जो है वो आप नमाज पढ़ें, तो सोना और जागना इस तरह ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। इसके बाद लफ्ज है नाफिलतन। नाफिलतन लफ्ज है, इसका रूट है नून फा लाम, और ये आप कसरत से इस्तेमाल करती हैं नफिल नमाज, और ये जायद को कहते हैं, जायद को, एक्स्ट्रा जायद। कुरान में इसके लिए 3 लफ्ज आए हैं, एक है अफ, जरूरत से जायद को भी कहते हैं, और जो अफू है उसके माने क्या होते हैं कि किसी चीज को छोड़ दिया जाए। जब आप किसी को माफ कर देती हैं तो क्या करती हैं, अफू दरगुजर से आप काम लेती हैं ना। दूसरा लफ्ज है नाफिला, नफल से है, नफल हर वो काम है जो वाजिबात और जरूरियात से जायद हो, नफली इबादत जिसमें फर्ज और सुन्नत के अलावा जो है जब नमाज पढ़ी जाए तो अल्लाह की रजा की खातिर उसको अदा किया जाए। सदका खैरात भी हो सकता है जिसको जो है वो इन्फाक कहते हैं। इसी तरह रोजे, नफली रोजे, जैसे आज आप लोगों ने 10 मुहर्रम का रोजा रखा हुआ है तो ये क्या है, ये नफल इबादत है आपकी। इसी तरह उमरा, ये भी नफल इबादत है। तो नेकी के काम जो है वो इजाफी तौर पर जो करना वो नफल इबादत कहलाती है। और तीसरा है द्वाद एनफा देफ, इसके मानी होते हैं असल मिकदार के बराबर जायद, जितनी चीज हो उतनी ही और ज्यादा। आपने पीछे सूरत अल बकरा में आयत 265 में पढ़ा था कमसल जन्नत बे रवतिन असाबहा वाबिलुन फअतत उकुलहा देफैन, दुगना जायद, यानी एक चीज उसके बराबर फिर इतनी ही और चीज। आयत नंबर 79 मुकम्मल हो गई, आयत नंबर 80, और इसमें जो है ये कोई लफ्ज ऐसे मुश्किल नहीं है ना। और यहाँ पे सुल्तान का लफ्ज जो है ये अहम लफ्ज है, और आप लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, ये लफ्ज जो है दलील के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दलील के लिए। और सुल्तान का लफ्ज जो है ये इक्तदार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, दलील के लिए, इक्तदार के लिए। दलील के लिए कुरान में 5 लफ्ज आए हैं, पहला दलील है, दूसरा हुज्जत है, तीसरा बयीना, चौथा बुरहान, और आखिरी दर्जा है सुल्तान का। और ये कहते हैं गलबा, कुव्वत, इख्तियार, अथॉरिटी लेटर को भी कहते हैं। ऐसी दलील जो वही इलाही से वाजे तौर पर साबित हो। फरमाने शाही को भी कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद है ये आयत नंबर 81 में 81 में जहा का और जहू का, इसका रूट है जे हा आफ। ये जविल अजाद में से है, भागना निकलना, उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, भागना भी और निकलना भी। जे हे काफ। अब आप देखें कि भागने के लिए पहला लफ्ज है फर्रा, मुल्जिम जो है भागता है, फरार होता है, तो फर्रा। दूसरा जो लफ्ज है वो है अबाका, अबाका का मतलब होता है कि गुलाम का आका के पास से भागना, किसी का अपनी जिम्मेदारियों से फरार हासिल करना। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे, जब वो भाग कर भरी हुई कश्ती में पहुंचे तो उसके लिए आया, क्योंकि अल्लाह की इजाजत के बगैर उन्होंने जो है वो अपनी कौम को छोड़ा था। इज अबका इलल फुल्किल मशहून, वहां के पे आया। तो भागे तो थे लेकिन अपने अल्लाह की इजाजत के बगैर गए थे। तीसरा लफ्ज जो है वो जहा का है, जे हे काफ, ये जबिल अजाद में से है, भागना भी निकलना भी, शिकस्त खाकर भाग खड़ा होना, किसी चीज का शिकस्त खाकर या कमजोर और मुजमिल होकर निकल पड़ना, उसके लिए आता है। जी आयत नंबर 83 है और इसमें लफ्ज है वन आ न आ, इसका रूट है नून अलिफ या। कुरान में ये सिर्फ दो जगह पर आया है, एक आप पीछे पड़ चुकी हैं सूरत नंबर 6 आयत नंबर 26 में और दूसरा आप यहां पे पढ़ रही हैं। और इसका मतलब होता है कि तकब्बुर की वजह से दूर रहने वाला या दूर होने वाला। वरना आ का लफ्ज आता है दूर रहना, परे हटना, दूर होना, लेकिन क्यों? तकबुर की वजह से। आयत नंबर 83 है, यऊसा या हमजा सीन, मायूसी के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। आयत नंबर 84 है, इसमें लफ्ज है शाह के लाते, शीन काफ लाम, शकल को भी कहते हैं ना, किसी चीज की हैयत, शकल, सूरत, तरीका, जहनी सांचा, सोच, उसके लिए इस्तेमाल होता है। यानी मादी तौर पे भी इस्तेमाल होता है, हिस्सी तौर पे भी। आप कहती हैं उसकी शक्ल कैसी थी, उसका सांचा कैसा था, जेनी यानी उसका ढांचा कैसा है। आप कहती हैं मेरे जहन में एक अश्काल आ रहा है, मुझे एक सोच आ रही है और मुझे वो चीज समझ में नहीं आ रही, इस तरह भी होता है। आहदा और आलमू, ये दोनों सुपरलेटिव डिग्री हैं, और आलमू तो आपको पता चल ही रहा है, लेकिन आहदा ये हर्फ इल्लत की वजह से इसका वजन अफअलु वाला नहीं है, लेकिन ये सुपर रिलेटिव डिग्री है। ठीक है, इसमें तफसील के इसके मानी है। और अब आ जाइए आयत नंबर 86 की तरफ, और शे ना लफ्स है, रूट क्या है इसका? शीन या हमजा, शे को कहते हैं, चीज को कहते हैं ना। और आयत नंबर 86 में है तजिदु, वो जीम दाल वजादा, माने के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और आयत नंबर 88 है इज्तमाअत या इज्तमाती, तो जी मीम आइन, जमा होने के लिए ये आम लफ्ज है। और यहां पर क्या है कि मतलब इंसान और जिन सारे जमा हो जाएं, जहीरा आयत नंबर 88 में है, जहीरा इसका रूट है जोए हा रा, और इसके माने क्या होते हैं? ये लफ्ज पीठ के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि ज़ोहारा मकत के ऊपर गर्दन तक का पिछला बैरूनी हिस्सा, और इसकी जमा ज़ुहूर आती है, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। और ज़हीरा होता है जैसे किसी को पीठ देने वाला, यानी किसी की मदद करने वाला। हाँ, किसी की मददगार के तौर पर भी, मदद के लिए भी ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। पुश्त पनाही करना। आयत नंबर 89 है, इसमें लफ्ज है फाअबा। ये लफ्ज जो है आप पहले पढ़ चुकी हैं, इसका रूट क्या है? हाँ, शाबाश, अलिफ बा या अबा, और इसके मानी है इनकार करना, इनकार करना। और इनकार करने के लिए कुरान में कितने लफ्ज आए हैं? ये आप पहले भी ये लफ्ज जो है वो पढ़ चुके हैं। पहला है अबा, इसके मानी होते हैं किसी बात को कबूल करने से इनकार करना, अड़ जाना, ना मानना, तस्लीम ना करना। तो इनकार के लिए ये आम लफ्ज है, किसी को मकरूह समझना, नापसंद करना, किसी चीज से ना खुश होना। शैतान को जब सजदा करने का हुक्म दिया गया तो उसने क्या किया? अबा वस्तकबरा। तो तकबर अलग आया है लफ्ज, लेकिन अबा के मानी क्या है? कि उसने इनकार किया, वो अड़ गया, उसने अल्लाह की बात को कबूल ही ना किया। दूसरा लफ्ज है अनकरा। नकरा के माने होते हैं किसी चीज को ना पहचानना। तीसरा लफ्ज है जहादा, ऐसी बात का जबान से इनकार करना जिसे दिल से ही तस्लीम करता हो, जहादा। और चौथा है कफारात, और ये आखिरी दर्जा है। इसके मानी है किसी चीज को छुपाना, उस पर पर्दा डालना, उसको पहचानना ही नहीं। किसान को काफिर कहते हैं कि वो जमीन में दाना छुपाता है, रात को काफिरत उन कहते हैं कि वो दिन की रोशनी को जो है वो छुपा देती है। और इसी तरह काफिर जो है वो क्या करता है? ईमान को छुपाता है, उसकी पर्दापोशी करता है। तो बहरहाल अबा पहला दर्जा है और कफारा जो है वो आखिरी दर्जा है। तो एक ही आयत में अबा भी आया और कुफूरा भी आया, तो फर्क समझ में आए तो सोचे कि कुरान समझने की लज्जत में कितना फायदा, कितना जो है वो असर होगा, वो बयान नहीं किया जा सकता। आयत नंबर है 90, और इसमें जो है एक लफ्ज है तफजुरा और दूसरा लफ्ज है यम्बुआ। यम्बुआ, अब आप देखें के पहला लफ्ज है फजारा, है ना, फा जीम रा, और फा जीम रा जो है इसके मानी होते हैं किसी चीज का वसी पैमाने पर फटना और इस तरह ये लफ्ज जो है जैसे इन फजारा, पानी का चश्मे से फूटकर बह निकला जबकि दहाना कुशादा हो जाए, इस तरह भी यह लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। इन फजारा इन बजा सा मिलते जुलते लफ्ज हैं दोनों आपस में। जब चश्मे का दहाना पूरी तरह खुला हुआ नहीं होता और पानी कुछ थोड़ा बहुत ऊपर भी उठ रहा होता है तो इन बजा सा है, और जब मुंह पूरी तरह खुल जाता है पानी दहाने पर आकर बहने लगे तो इन फजारा है। तो बहरहाल हत्ता तफ जुरा, तो यहाँ पे ये लफ्ज जो है वो किसके लिए आया है? फाड़ने के लिए आया है, कि यहां तक जो है तू फाड़ दे, और इसके बाद है यम्बुआ, तो वो फटेगा तो पानी निकलेगा ना, और यहां तक वो चश्मा बन जाएगा। तो यम्बुआ जो है ये चश्मे के लिए इस्तेमाल हुआ है। कुरान में चश्मे के लिए तीन लफ्ज आए हैं, एक आयन का है, आयन। अब देखिए आंख को भी आयन कहते हैं, चश्मे को भी आयन कहते हैं, इनमें निस्बत क्या है? आंख से कतरा कतरा आंसू टपकता है ऊपर से नीचे की तरफ, जो चश्मा होता है उससे भी कतरा कतरा पानी जो है वो नीचे को टपकता है, तो दोनों में ये निस्बत है। आंख से पानी बहता है, इसी तरह मशकीजे के मुंह को भी आयन कहा जाता है क्योंकि उससे पानी जो है वो निकलता है, इसी तरह चश्मे को भी आयन कहते हैं। तो निस्बत क्या है कि पानी नीचे आना। दूसरा लफ्ज है यम्बू, इसका रूट है नून बा आयन, इसके मानी है चश्मे से पानी फूटना। यम्बू ऐसे चश्मे को कहते हैं जिससे पानी उबल रहा हो, इसकी जमा है यनाबी। उर्दू में आप इसको इस्तेमाल करते हैं मम्बा, फलां चीज जो है ना उसका मम्बा ये है। तो मम्बा उस जगह को कहते हैं जहां से पानी फूटता है, जो उसका मकाम है। फिर आप आइए आयत नंबर 91 है, इसमें लफ्ज है नखील का, और ये बाग खेती को कहते हैं जहां खजूर के दरख्त कसरत से हों, इसका रूट है नून खालाम, खजूर के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। फिर है इनेबिन, ये अंगूर की बेल को भी कहते हैं और अंगूर के फल को भी कहते हैं, अंगूर के एक दाने को भी इनाबतुन कहते हैं। फिर आ गया फतुफ्जीरा, तो अब इसका मतलब क्या है कि फटकर नहर का जारी होना ना, फतुफ्जीरा भी आ गया और अलनहार भी आ गया है ना। और नून हा रा जो है ये आपने पीछे सबक में आपने पढ़ा है जहां पे वला तनहर हुमा के वालदैन को डांटना नहीं है। अब आप सोच सकती हैं कि उधर डांटना है और इधर नहर है पानी की, तो मैंने बताया था निस्बत क्या है कि पानी का बहकर निकलना और अपने लिए जगह बना लेना, खून का बहकर निकलने के लिए भी आता है। इसी तरह जब कोई किसी को डांटता है तो डांटने से उसको जैसे जख्म हो जाते हैं, जगह सी बन जाती है, तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो निस्बत आपस में यह है। तो फतुफजीरा और तफजीरा ये एक फैमिली का लफ्ज है, खिलाला खालाम लाम दरमियान के लिए इस्तेमाल होता है, और ये आपने पीछे खलील लफ्ज भी पढ़ा था है ना, हम उसमें से उस वक्त गुजर गए थे, इसलिए कि आपको खलील जो है आप पहले ही पढ़ चुकी हैं कि खलील कौन थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए खलील का लफ्ज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्तेमाल किया है। और ये आयत 73 सूरत बनी इसराइल में आपने पढ़ा है, लता खजू का खलीला, तो जिस के दिल में मोहब्बत जो है उसके अंदर जज्ब हो जाए, उसके दिल के अंदर सरायत कर जाए, ऐसा दोस्ती का दर्जा, तो उसको खलील कहा जाता है। और खिलाल दरमियान के लिए आता है कि बाग के अंदर जो है वो नहरें जारी हैं। फिर है किसाफन, आयत 92 है, काफ सीन फा, और ये कहते हैं टुकड़े को। अच्छा अब आप देखें कि टुकड़े के लिए भी आपने कई लफ्ज पढ़े हैं ना, टुकड़े के लिए आपने, टुकड़े के लिए कुरान में जो है वो नौ नहीं बल्कि 10 लफ्ज आए हैं। तो चले बाकियों को नहीं छेड़ते, लेकिन ये जो किस्सा फन है इसको देख लेते हैं, इसका चौथा दर्जा है और किस्मत उन वाहिद है, बादल या रुई के टुकड़े को कहते हैं जो आसानी से अलहदा भी हो जाए और जुड़ भी जाए। मुतखलखल अजसाम, अब आप देखें कि बादल जो है इसको आप कोई शेप नहीं दे सकते, इसकी यानी तसव्वुराती शेप है, इधर उधर ऊपर नीचे, कभी कुछ बन रहा होता है कभी कुछ बन रहा होता है। आप जब जहाज में बैठे और सफर करें ना, आप जरूर इस बात का मुशाहिदा करें कि आप यूं लगता है कि बादल अब आपके नीचे आ गया, क्या बात है आपकी है ना, बादल आपके नीचे आ गया, और क्या क्या उसकी शेप बनती जाती है जो आपके तसव्वुर में होती है ना, शेप बनती जाती है। तो मुतखलखल अजसाम को कहते हैं, ख्याली शक्लें। तो मुतखलखल अजसाम जैसे बादल या रुई का टुकड़ा, रुई को भी आप ले लें और उसके मुख्तलिफ उसकी शक्लें बना सकते हैं। बहरहाल आयत नंबर 92 है और इसमें लफ्ज है कबीला, काफ बालाम, अल कबील जो है ये कबीला की जमा है, और कबीला वो जमात जो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो हो और एक दूसरे के सामने हो तिबला, तिबला सामने होता है ना, उसके लिए भी लफ्ज इस्तेमाल होता है तिबला। और यहां पे भी रू दर रू के लिए आया है, ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सामने या रू बरू के लिए। आयत नंबर 93 है और इसमें लफ्ज है जुखरुफ का। ये लफ्ज जो है इसका रुबाई है फ्रूट, और ये जीनत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मुलम्मा की भी चीज को कहते हैं। और जीनत के लिए कुरान में पांच लफ्ज आए हैं, जुखरुफ इसका दूसरा दर्जा है। पहला है जीनत, दूसरा है जुखरुफ, जाहिरी सजावट, मुलम्मा साजी, वो जीनत जो मुलम्मा साजी से हासिल हो। जुखरफुल कलाम, जुखरफुल कौली गुरूरा, आप पढ़ चुकी है ना। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, आप ऐसा रिस्पॉन्स देती हैं कि आपने कभी सुना था या पढ़ा था तो बड़ी खुशी होती है। फिर इसके बाद अगला लफ्ज है तरका, तरका, और इसका रूट है रा काफ या। इसके मानी है चढ़ना, ये लफ्ज चढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चढ़ने के लिए और खासतौर पर ऊपर को चढ़ना। इसके लिए छह लफ्ज आए हैं, एक है अराजा, उरूज इसी से है, दूसरा है रकिया। इसके मानी झाड़फूंक करना भी है, झाड़फूंक करना, और दूसरे इसके मानी हैं बुलंदी पर चढ़ना भी। सूरत अल फातिहा का आपने नाम पढ़ा था, एक क्या नाम पढ़ा था सूरत फातिहा का? हाँ, सूरत फातिहा का एक नाम जो है वो रुकिया है, दम, क्योंकि सहाबी ने जो है वो सूरत फातिहा पढ़कर जो है वो दम किया था। तो कबीले के सरदार को जैसे किसी बिच्छू ने, सांप ने, किसी जहरीली चीज ने काट लिया था, तो जब सूरत फातिहा को पढ़कर सहाबी ने दम किया तो उसके जिस्म से जो जहरीली चीज का जहर का असर था ना, जो उस पर चढ़ा हुआ था, वो उतर गया। तो इसके मानी क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता नरम रफ्तार से ऊपर चढ़ना, अपनी वुसत कुवत सरफ करना, अपनी हिम्मत के मुताबिक ऊपर चढ़ना, तो ये लफ्ज जो है इस्तेमाल किया जाता है। तरक्की भी इसी से है ना। क्या बात है, आप कितने खुश हो रहे हैं, अरे ये तो हमने सुना हुआ था। तरक्की में क्या करते हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करके ऊपर चढ़ते जाते हैं, बुलंदी की तरफ आते जाते हैं, माशाल्लाह। और फिर है नकरा ओहू, इसका रूट क्या है? काफरा हमजा, सुबहाना सिनबाहा, और आखिरी लफ्ज क्या है? रसूला, रासीन लाम, और इसके मानी है हवाओं का धीमी और नरम रफ्तार से चलना। और इसी तरह जो है ये लफ्ज रसूल और पैगाम लाने वाले के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, फरिश्ता भी हो सकता है पैगाम लाने वाला, और उसके साथ ही जो है वो कोई रसूल भी हो सकता है। इसी तरह रिसाला, आप उर्दू में रिसाला बड़ी कसरत से बोलती हैं, तो रिसाला क्या होता है कि जिसमें मुख्तलिफ मैसेजेस जो है वो आप देते हैं।